ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमाश्लोके भक्तेर्भवति नैश्चिकी।
श्रीमद् भागवतम स्कंद पांच अध्याय एक श्लोक संख्या एक। राजोवाच प्रियव्रतः भागवतः आत्म आरामः कथं मुने गृहे आरमत यत् मूलः कर्मबन्धः पराभवः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मारामा कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः प्रियव्रतो भागवत आत्मारामः कथं मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथं मुने गृहे रमतो यन्मूला प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथं मुने गृहे रमता यन्मूला कर्मबन्ध पराभवः। भागवत राम कथं मुने राजोवाच व्रतो भागवत राम कथं मुने
प्रवाभवः वाचो वाच प्रियव्रतो भागवता भागवत मुने वाच राम कथम मुने नबंधा परा भवा शब्दार्थ इस प्रकार है। राजा उवाच, राजा परीक्षित ने कहा, प्रियव्रतः राजा प्रियव्रत भागवतः परम भक्त आत्मा रामः आत्मसाक्षात्कार में रुचि रखने वाला कथम क्यों मुने हे मुनि गृहे घर पर आरमत भोग किया यत मूलः जिसे मूल कारण माने मानते हुए कर्म बंधः सकाम कर्मों का बंधन पराभवः उद्देश्य की पराजय। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसा गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन सकाम कर्म का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। तात्पर्य, भागवत के चतुर्थ स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतया उपदिष्ट किया था। मानव जीवन का उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम में वापस जाना है। जब नारद मुनि राजा के इस संबंध में पूर्णतया उपदेश दे चुके थे तो फिर उन्होंने भवबंधन के मूल कारण गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश क्यों किया। महाराजा परीक्षित अत्यंत विस्मित थे कि आत्मसाक्षात्कार करने वाले तथा भगवान के प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में कैसे रहे। भक्त को गृहस्थ जीवन के लिए वस्तुतः कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु आश्चर्य है कि राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का बहुत अधिक भोग किया। क्योंकि कोई यह तर्क कर सकता है कि गृहस्थ जीवन का भोग क्यों अनुचित है। इसका उत्तर यह है कि गृहस्थ जीवन में प्राणी सकाम कर्म के फल से बंध जाते हैं। गृहस्थ जीवन का सार इंद्रिय सुख है और जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने की दिशा में मन को लगाता रहता है तब तक वह कर्म फल से बंधा रहता है। आत्मसाक्षात्कार के प्रति ऐसी अनभिज्ञता ही मानव जीवन के सबसे बड़ी पराजय है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप में कर्म बंधन के से बाहर निकलने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु जब तक मनुष्य जीवन के उद्देश्य को विस्मृति करता हुआ सामान्य पशु की तरह आचरण अर्थात आहार निद्रा भय तथा मैथुन करता है, तब तक वह अबद्ध जीवन में फंसा रहता है। ऐसा जीवन स्वरूप विस्मृति अर्थात अपनी वास्तविक वैधानिक स्थिति को भूलना कहलाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में जीवन का शुभारंभ ब्रह्मचारी के रूप में होता है होता था। ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य होता था कि वह संयम का पालन करे और संभोग से विरत रहे। अतः यदि कोई ब्रह्मचर्य के नियमों में पूर्णतया प्रशिक्षित होता है तो फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता, तब वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण ब्रह्मचर्य। इस प्रकार राजा प्रियव्रत आश्चर्यचकित थे कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के नियमों में प्रशिक्षित होकर भी महाराजा प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किया। इस श्लोक में भागवत आत्मारामः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई भगवान के ही समान आत्मतुष्ट होता है तो उसे भागवत आत्मारामः कहा जाता है। तुष्टि कई प्रकार की होती है। कर्मीजन अपने सकाम कर्मों से, ज्ञानीजन ब्रह्म ज्योति में मिल जाने तथा भक्तजन भगवान की सेवा में तत्पर रहते हुए तुष्ट रहते हैं। भगवान आत्मसंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे परम ऐश्वर्यवान हैं, और जो उनकी सेवा करने से संतुष्टि होता है वह भागवत आत्मारामः कहलाता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों पुरुषों में से कोई ऐसा एक पुरुष मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, और हजारों ऐसे प्रयत्न करने वालों पुरुषों में किसी एक को इस संसार की चिंताओं से मुक्ति मिल पाती है तथा वह आत्मसंतुष्ट हो पाता है। किंतु यह तुष्टि भी अनंतिमय तुष्टि नहीं है। ज्ञानी तथा कर्मी सकाम होते हैं और योगी भी वैसे होते हैं, किंतु भक्त निष्काम होते हैं। भगवान की सेवा में जो तुष्टि होती है उसे अकाम कहते हैं, और यही परम तुष्टि है। इसलिए महाराजा परीक्षित ने जिज्ञासा की कि जो परम पद पर रहकर पूर्ण तुष्ट रहा हो वह गृहस्थ जीवन से कैसे तुष्ट हो सकता है। इस श्लोक में आगत पराभव शब्द की उल्लेखनीय है। जब कोई पुरुष गृहस्थ जीवन में तुष्ट रहता है तो वह अभागा होता है, क्योंकि ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका होता है। प्रहलाद महाराज ने बताया है कि गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों में मनुष्य किस प्रकार उलझता जाता है। आत्मपाटम गृहमंदकूपम, गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई इस कूप में गिर जाता है तो उसकी आत्मिक मृत्यु अवश्य संभावी है। अगले श्लोक में यह बताया गया है कि गृहस्थ जीवन बिताने हेतु बिताते हुए भी महाराज प्रियव्रत किस प्रकार मुक्त परमहंस बने रहे। ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वावदान्तिकं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज से पांचवा स्कंद का शुभारंभ हो रहा है। चौथा स्कंद का पूर्णावधि हुआ, जिसके अंतर्गत खास करके आपने चार लीलाओं को श्रवण किया। चौथा स्कंद में पहला दक्ष, जिन्होंने शिवजी के प्रति अपराध किया और पूरा दक्ष यज्ञ का वर्णन सुना। बाद में ध्रुव महाराज का लीला को श्रवण किया, ध्रुव महाराज किस प्रकार भगवान को प्राप्त किए उनका भी लीला को श्रवण किया। तीसरा प्रचेताओं के विषय में आपने पृथु महाराज के विषय में सुना। तीसरा चौथा प्रचेताओं के विषय में आपने श्रवण किया। तो इस प्रकार उत्तानपाद का जो वंश है उनके विषय में मुख्य प्रमुख जो राजाओं के विषय में श्रवण किया। अभी प्रियव्रत के जो वंश है उनका चर्चा आगे हो रही है। खास करके तीसरा और चौथा स्कंद ये दो बहुत ही विस्तार से विदुर मैत्रेय संवाद का वर्णन करने वाले स्कंद है। अभी विदुर मैत्रेय का संवाद ये दो स्कंदों में समाप्त हो जाता है। खास करके विदुर मैत्रेय संवाद में शुद्ध भक्ति क्या है उनका स्थापना हुआ है, और साथ साथ में अन्य प्रकार के जो भक्ति है तामसिक राजसिक और सात्विक, ये जो अन्य तीन प्रकार के जो गुणात्मक गुणों के अंतर्गत वाली जो भक्ति है उनका भी वर्णन हमने सुना। जो दक्ष है वो कृष्ण के भक्त हैं लेकिन तमसिक, और ध्रुव महाराज जो है वो रजोगुणी भक्ति, भगवान की प्राप्ति करने के लिए नहीं गए थे, भगवान को प्राप्त इसलिए करने गए थे वो ताकि उनको राज्य मिले, और पृथु महाराज औपचारिकता रूप में एक ड्यूटी के रूप में भगवान का मुझे उपासना करना है, ये मेरा ड्यूटी है, ये सात्विक था। कर्तव्य मान के जो भगवान की भक्ति करता है वो सात्विक भक्ति मानी गई है। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है उसका उल्लेखन आपको प्रचेताओं को शिवजी ने स्वयं किया। बड़ा अद्भुत है चौथा स्कंद। शुरुआत में भी शिवजी आते हैं जिनका खूब निंदा किसने किया, दक्ष ने किया, और वही शिवजी जो है उनकी महिमा को स्थापना करते हुए चौथे स्कंद के आखिरी जो लीला है उसके अंदर रुद्र गीत का वर्णन हुआ है, जिसके अंदर दोनों भागवत विधि पंचरात्रिक विधि चतुर्व्यूह का निरूपण अनेक अद्भुत चीज़ों को हमने चौथे स्कंद में श्रवण किया। इसलिए ये जो चौथा स्कंद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कंद माना गया है, खास करके ये देखने के लिए मैं किस प्रकार का भक्त हूँ, दक्ष हूँ, या दक्ष के गुण है क्या, या जब करने के टाइम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे गाड़ी दो, बंगला दो, मैं व्यापार में पैसा इधर फंसा हुआ है थोड़ा कर दो, जब भी हो रहा है वो भी चल रहा है साथ साथ में, तो मैं किस प्रकार का हूँ, या प्रचेता हूँ जैसे इतना सुंदर भाईचारा उन लोगों के बीच में है कि उनसे प्रसन्न हो के स्वयं शिव जी प्रकट हुए, और शुद्ध भक्ति का उपदेश रुद्र गीत में उन्होंने वर्णन किया, तो मैं क्या कौन सा भक्ति कर रहा हूँ, इसका विवेचन जो है हम अपने आप को कर सकते हैं चौथा स्कंध में। वैसे आप जानते हैं कि भागवत में 10 विषय वस्तु है, प्रायः 10 विषय वस्तु सारे स्कंदों में हमको प्राप्त होता है, कुछ कुछ मात्राओं में प्राप्त होता है, लेकिन विशेषतः एक एक विषय वस्तु आपको एक विशेष स्कंद में प्राप्त होता है। जैसे पहले 2 स्कंदों में तो सारे विषय वस्तुओं का वर्णन तो हुआ है, एक इंट्रोडक्शन जैसा पहला 2 स्कंद, जिसके अंदर पहला स्कंद में आपको नैमिषारण्य ऋषि और सुत गोस्वामी बीच में संवाद है, दूसरा स्कंद में जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में संवाद है, और भागवत का एक प्रकार का ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत कैसे कहा, ये 2 जो परंपरा के अंतर्गत जो भागवत प्राप्त हुआ वो हमको दूसरे स्कंद में प्राप्त होता है, और उसके बाद जो है नारद जी व्यासदेव को कैसे भागवत वर्णन किया हमको पहले स्कंद में प्राप्त होता है। तो पहला 2 स्कंद जो है उसके अंदर भागवत को, भागवत का प्राकट्य, भागवत का जो सब्जेक्ट है उसका वर्णन है क्या भागवत में, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, या भागवत के लक्षण क्या है, वो है अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणतया मन्वंतरे शानुगता निरोधो मुक्तिराश्रयः। इसलिए दूसरे स्कंद के आखिरी में भागवत के 10 विषयों को उल्लेखन करते सुत गोस्वामी पाद। इसके अंदर सबसे पहला उन्होंने कहा सर्ग, तो ये सर्ग का विषय वस्तु जो है तीसरा स्कंद से शुरू होता है, इसे तीसरे स्कंद में सर्ग का वर्णन ज्यादा प्राप्त होता है, और चौथे स्कंद में हमको सर्ग विसर्ग प्राप्त होता है, और साथ साथ में भक्ति आश्रय तत्व का भी थोड़ा बहुत वर्णन प्राप्त होता है। खास करके पांचवें स्कंद में जो इसका शुरुआत आज से हो रहा है वो है स्थानम, ये सब्जेक्ट है जो भागवत का तीसरा विषय वस्तु है, हमको भागवत के 5वें स्कंद में प्राप्त होता है। जो भागवतम का जो 6ठा स्कंद है उसमें श्रीमद् भागवत के जो 4था विषय वस्तु है सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम, पोषणम 6ठा स्कंद में हमको प्राप्त होता है। वैसा एक एक स्कंद में एक एक विषय वस्तु तीसरे स्कंद के शुरू होते हुए, लेकिन थोड़ा सा 10वां स्कंद में आपको आश्रय तत्व प्राप्त होता है, 11वां स्कंद में निरोध और 12वां स्कंद में मुक्ति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 10 विषय वस्तुओं का विभाजन भागवत में वो तीसरा स्कंद से शुरू होते 12वां स्कंद तक होता है। तो 5वां स्कंद का विषय है वो क्या है, स्थानम। अभी स्थानम वैकुंठ विजयः, स्थितिर वैकुंठ विजयः। दूसरे स्कंद में ये जब 10 विषय वस्तुओं का उल्लेखन हुआ है उसके अंदर एक एक विषय वस्तु को संक्षिप्त वर्णन किया गया है, सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, स्थान क्या है और पोषण क्या है। तो पोषणम तदनुग्रहात्, स्थितिर वैकुंठ विजयः पोषणम तदनुग्रहात्, स्थितिर वैकुंठ विजयः, स्थिति और स्थान दोनों एक ही हैं, ये क्या है, वैकुंठ विजयः। तो ये 5वां स्कंद का सब्जेक्ट है स्थिति या स्थान, जिसके अंदर उन्होंने भगवान ने दिखाया वैकुंठ विजयः। भगवान कृष्ण का एक नाम है वैकुंठ, यानी वैकुंठ यानी भगवान श्री कृष्ण विजयी है, हमेशा विजयी रहेंगे, विजयी मतलब तीनों गुणों से परे रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने क्रिकेट मैच में जीत लिया तो वो जीत गया, विजय हो गया, ये विजय या जय या जयंती ये शब्द तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब तीनों गुणों के परे हो, तीनों गुणों को जब नियंत्रण करता हो या तीनों गुणों के प्रभाव में ना हो उस व्यक्ति को ही विजयी कहा जा सकता है। भगवान वो तीनों गुणों से परे होने के नाते उनका जय जयकार करने से हम क्या करते हैं, हम अपने हृदय में जो कर्म बंधन है उसको जय कर सकते हैं। प्राय लोग सोचते हैं कि भगवान को जय जयकार करने से उनका वखान हो रहा है, उनका बड़प्पन हो रहा है। नहीं, आपका जय जयकार करने से उनको कुछ होने वाला नहीं है, वो पहले से ही जय है, विजयी है। भगवान जैसे हम कहते हैं श्री गुरु गौरंग विजयते जयते जय हो श्रील प्रभुपाद की जय हो, उसके द्वारा क्या हो रहा है हमारा हृदय में जो कर्म बंधन है उसको हम जय कर रहे हैं। हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर है उसके ऊपर हम जय करते हैं। तो ये पांचवा स्कंद का ये जो भी बड़े ध्यान से अध्ययन करता है वो तीनों गुणों के जो ईश्वर है वास्तविक ईश्वर है कृष्ण, उनका विजयता कैसे है, वो कैसे विजयी है, वो तीनों गुणों से परे कैसे है, ये इसका साक्षात्कार हो जाता है। अस्तित्व में स्थान मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण आप लोगों के या जीवों के कर्म बंधन के अनुसार कर्म के अनुसार अलग अलग स्थान प्रदान करते हैं। जैसे किसी का कर्म है स्वर्ग में रहना स्वर्ग का स्थान प्रदान करते हैं, किसी का कर्म है नरक में जाना नरक में स्थान प्रदान करते हैं, किसी को पृथ्वी में है उनका पृथ्वी में क्या क्या प्राप्त होता है। यानी दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण का जो भौतिक अनुग्रह है जीवों के ऊपर इसका वर्णन पांचवें स्कंद में हुआ है, स्थान के सब्जेक्ट है। तो भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक अनुग्रह है क्या है, भक्ति का रक्षा करना। इंद्र जैसे जो भक्त हैं उनको उनकी भक्ति को भी भगवान रक्षा करते हैं। इससे छठे स्कंद आपको बड़ा अद्भुत चीजें प्राप्त होता है, क्या क्या तो विचित्र विचित्र चीजें प्राप्त होता है। उसका एकमात्र सब्जेक्ट है तासुर का भक्ति, उन्होंने रक्षा किया। क्यों, भगवान श्री कृष्ण का दया दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का दया जो है हमको हवा मिल रहा है पानी मिल रहा है हमको रहने के लिए स्थान मिल रहा है आपको घर मिला है, ये भी भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि यही है भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह इसी में संतुष्ट हो जाएंगे तो समस्या है। वास्तविक अनुग्रह भगवान श्री कृष्ण का हमको भजन करने का मौका मिल रहा है, कृष्ण कथा को श्रवण कीर्तन करने का मौका मिल रहा है, कृष्ण का वास्तविक अनुग्रह है। जो भौतिकवादी हैं वो क्या सोचते हैं कि भगवान की कृपा से मेरे बच्चे को अच्छा नौकरी मिल गया, भगवान की कृपा से हमको अच्छा घर मिल गया, अच्छी बात है हा? लेकिन भगवान की वास्तविक कृपा ये नहीं है। ये भगवान की वास्तविक कृपा से ये है कि हमको भगवान के नाम जप करने का मौका मिल रहा है, भगवान विग्रह का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। देखिए संसार में बहुत सारे लोगों के घर है बहुत सारे लोगों के पास धन है, लेकिन कितने लोगों के पास मौका है कि भगवान का विग्रह का दर्शन करने का मौका है, कितने लोगों के पास मौका है नाम जप करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भागवत सुनने का जो रुचि है मौका है वो कितने लोगों को प्राप्त है, बहुत कम लोगों को प्राप्त है। इसलिए पोषणम का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक कृपा, और स्थानम का अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण का जो भौतिक कृपा है इन जीवों का उसका वर्णन हमको पांचवें स्कंद में होता है। तो भौतिक कृपा को भी समझना उतना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए ताकि हम समझे कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये भौतिक जगत से परे है। खास करके श्रील प्रभुपाद जी ने पांचवें स्कंद का जब अनुवाद करके ये ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया, पांचवां स्कंद जब प्रकाशित हुआ तो बहुत सारे उनके शिष्य जो है पांचवां स्कंद को पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते खास करके आखिरी के कुछ अध्यायों में जहाँ भौगोलिक विज्ञान का वर्णन है, अंतरिक्ष विज्ञान का वर्णन है, वैदिक कॉस्मोलॉजी का जब वर्णन हुआ तो समय बहुत सारे भक्त विचलित हो गए और भक्ति को छोड़ने लगे। केवल नवदीक्षित नहीं थे वो, कुछ उस समय के जीबीसी थे, उस समय के कुछ प्रेसिडेंट थे, उस समय के बड़े प्रचारक के माने जाने माने प्रचारक थे, वो सब पांचवा स्कंद को पढ़ के वो छोड़ दिए, इस्कॉन को छोड़ दिए। तब कुछ लोग भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी पांचवा स्कंद को आपने जैसे प्रकाशित किया सभी लोग उसको पढ़ के छोड़ रहे, क्यों? तो उनके अंदर जो आपने बातें लिखा है भौगोलिक विज्ञान के विषय में और अंतरंग विज्ञान के विषय में, जिसको ये अस्तित्व में ज्योतिष का एक भाग है, तो ये पढ़ के उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब भावुकता है, इस पर साइंस नहीं है, ये जबरदस्ती मान्यता माना जा रहा है। क्योंकि हमको तो आधुनिक शिक्षण में बताया जा रहा है सूर्य जो है वो चंद्रमा से बहुत बहुत दूर है पृथ्वी से, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है और सूर्य जो है वो बहुत दूर है, और चंद्रमा को एक सैटेलाइट माना गया है, ग्रह नहीं माना गया चंद्र को, लेकिन भागवत में चंद्र को ग्रह माना गया है। तो ये सब बातें उनकी दिमाग में जज नहीं रहा है वैदिक कॉस्मोलॉजी, इसलिए वो सब छोड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कोई चिंता नहीं किया, इतने बड़े बड़े दिग्गज प्रचारक को छोड़ के जा रहे थे संस्था को, कोई चिंता नहीं किया। तो प्रभुपाद ने कहा कि एम्प्टी काउ शेड्स इज बेटर देन काउज विद डोंट गिव्स मिल्क। तो ऐसा गाय जो दूध नहीं देता है वो उसको रखने से अच्छा है कि कोई गाय ना रहे, ऐसे कहावत है। ये कहने की बात ये है, जिसका भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं है, भगवान श्री कृष्ण में विश्वास होने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण संसार को किस प्रकार चला रहे हैं और इस संसार को कैसे बनाया है, वो जो विज्ञान में विश्वास होना, इसको भी कृष्ण के ऊपर विश्वास कहा जाता है। तत्व संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी पाद इस बात को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय स्वरूप होने के नाते बद्ध जीव उनको डायरेक्टली उसको समझ नहीं सकता, उनको नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो केवल उनकी शक्तियों के द्वारा ही समझना होगा। क्या है वो दो शक्तियों के दो शक्ति जिनके द्वारा भगवान को समझ सकते हैं, एक है उनकी जड़ शक्ति भौतिक शक्ति प्रकृति, दूसरा है जीव शक्ति। इसलिए भगवद गीता में भी या सारे शास्त्रों में एनालिसिस हुआ है, क्या इसका एनालिसिस हुआ है, किसका निरीक्षण हुआ है, किसका विश्लेषण हुआ है, एक जीव शक्ति का विश्लेषण हुआ है और दूसरा है जड़ प्रकृति का विश्लेषण हुआ है। जैसे उपनिषदों में कहा गया है अनोरणियाम महतो महियाम, अनोरणियाम इसका अर्थ क्या है, जो अणु से का भी अणु है कौन है वो जीव, यानी जीव के विषय में जानना। दूसरा क्या है महतो महियाम, यानी जो समिष्ट प्रकृति जो है उसके विषय में जानना, या उन दो विषयों के बारे में जानने के द्वारा ही भगवत तत्व का प्रकाश हृदय में हो सकता है। जिनका विश्वास भगवान के द्वारा स्थापित जो विज्ञान है उसमें नहीं है, खास करके भगवान ने इस सृष्टि कैसे की है और इस सृष्टि में क्या क्या चीजें हैं उसके विषय में किसी को संशय है, असलियत में वो संशय भगवान के ऊपर संशय के बराबर है। जैसे अभी हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ, हमारे भक्तगण दीक्षा ले लेते हैं, जप करते हैं, भगवान में बहुत विश्वास कर प्रतीत होते हैं। जब बात आती है आप अपने बच्चों को वैदिक विज्ञान पढ़ाइए, आधुनिक विज्ञान जो है वो गलत है, नहीं उनको विश्वास नहीं होता, नहीं नहीं अगर वैदिक विज्ञान पढ़ाएगा तो पता नहीं इसमें कितना हद तक सत्य है, उससे क्या होने वाला है मेरे बच्चे को, आधुनिक विज्ञान पढ़ेगा और कम से कम उसको नौकरी तो मिलेगा। इसका मतलब क्या है, उनका विश्वास वैदिक विज्ञान में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आप गाय रखिए, वर्णाश्रम धर्म को पालन कीजिए, तो अरे ये सब करने से क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। तो ये व्यवहारिकता के नाम थे, क्या हो रहा है कृष्ण के ऊपर हम अविश्वास को प्रकाशित कर रहे हैं। ये हमारी भक्तों के समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। ये बीमारी अभी की बात नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी के समय में से ही था कि अविश्वास कृष्ण के प्रति जो अविश्वास जो है ना, वो हम कृष्ण के द्वारा प्रस्तापित विज्ञान के प्रति अविश्वास के द्वारा हम प्रकाशित करते हैं। कृष्ण ने आयुर्वेद दिया है, कृष्ण की रचना है आयुर्वेद, तो इसके ऊपर अविश्वास, यही बोल ऐसा कहा गया तो भूमंडल है, ये भूमंडल किस प्रकार है, भूमंडल चपटा है, बड़े भूगोल है लेकिन मंडल चपटा है, तो ये जो जानना ये इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, सोचेगा अरे ये सब क्या फालतू बातें हो रहा है। कोई अगर विचार करे इसका मतलब है कि कृष्ण में हमारा अविश्वास। लेकिन जो व्यक्ति उसको बड़े वैज्ञानिक ढंग से समझता है, पांचवा स्कंद को बड़े श्रद्धा से श्रवण करता है, तो उनको कृष्ण का विज्ञान प्रकट होता है। इसलिए भागवत के दसवें स्कंद, भगवद गीता में के दसवें अध्याय में भी भगवान ने कहा अर्जुन ने जब पूछा केशु केशु च भावेशु, कौन से भाव में आपको इस जगत में रहते हुए भौतिक चीजों को देखते हुए आपका स्मरण कर सकता हूं, भगवान के जो विभूतियां हैं यानी इस जड़ प्रकृति में भगवान की विभूतियों को देख के भगवान का अनुभव करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ये पांचवा स्कंद का विषय है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दिया है। वैसे पांचवें स्कंद में कितने अध्याय हैं और उनका विषय क्या क्या है उसके विषय में थोड़ा सा एक परिचय देंगे। सबसे पहला पांचवें स्कंद का 3 अध्याय है, 3 अध्यायों में 3 बड़े राजाओं का वर्णन है, प्रियव्रत, अग्निधर और नाभि, और ये 3 राजा हुए। खास करके भागवत में ये राजाओं का उल्लेखन इतना हो क्यों हुआ है, इसलिए इधर कहा गया है। आखिर में विदुर कहते हैं कि आपने पिछले स्कंद की आखिरी श्लोक की बात है जिसके अंदर कहा गया है जो व्यक्ति इन महान राजाओं के विषय में श्रवण करता है वो निश्चित रूप में कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भागवत में देखिए विरक्तों का वर्णन बहुत कम हुआ है, एक दो, लेकिन सारा वर्णन जो है राजाओं के विषय में वर्णन हुआ है। क्यों वर्णन हुआ है? ये राजा जितने भी है बड़े बड़े राजा, प्रियव्रत राजा हो या ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, आप पूरा 9 स्कंद तक वर्णन किसका? राजाओं का वर्णन है। क्यों हुआ है? ये सारा जगत को बताने के लिए कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो उन्होंने क्या किया, सभी लोगों ने भक्ति किया और अंततः वो भगवान को प्राप्त किए, अंततः सब छोड़ दिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है गृहस्थ का विषय है। श्रील प्रभुपाद जी बड़े विस्तार से इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य देते हैं, तो इसे हमको एक बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश मिलता है। बड़े राजा भी क्यों ना हो, राजा मतलब गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ अपना घर को संभालता है, राजा बहुत सारे घरों को संभालता है, राज्य संभालता है, तो इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना या राज धर्म को, राजा की पदवी को स्वीकार करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम उसको कैसे छोड़े, हाउ टू गिव अप। हम कुछ चीजों को स्वीकार करते हैं किसको? त्याग करने के लिए। तो भागवत में ये फॉर्मूला सिखाया गया है, स्वीकार करो, गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो, व्यापार को स्वीकार करो, राजपद को स्वीकार करो। किसके लिए स्वीकार करो? त्याग करने के लिए स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट टू गिव इट अप। तो बोले कि क्यों भाई ऐसा क्यों करें? जैसे कोई स्नान करने जाता है, स्नान करने जाता है तो शरीर में साबुन लगाता है कि नहीं, तो साबुन को स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? उसको लगा के बाहर आने के लिए नहीं, उसको लगा के उसको छोड़ने के लिए, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए वास्तविक गृहस्थ वो है, वास्तविक राजा वो है जो हर चीज को स्वीकार करता है, त्याग करने के लिए स्वीकार करता है, बटोर के रखने के लिए स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए 3 अध्यायों में वर्णन हुआ है इन बड़े राजा जो अंततः वो लोगों ने क्या किया, वो वैराग्य लेके भगवान को प्राप्त किए। बाद में 3 अध्याय जो है ऋषभ देव के विषय में वर्णन आता है, उसके बाद ऋषभ देव के महान पुत्र हुए जिनका नाम है भरत महाराज, उनके विषय में 8 अध्यायों का वर्णन है। उसके बाद जो है आप 1 अध्याय प्राप्त होता है राजा गया के विषय में, जम्बूद्वीप के विषय में 4 अध्यायों का वर्णन है, और 1 अध्याय उन बहुत सारे जो अन्य द्वीप है उसके विषय में वर्णन है, और उसके बाद जो है 2 अध्यायों में जो हमारे अलग अलग प्रकार के जो मंडल है उनके विषय में वर्णन है, और 1 अध्याय में ध्रुवलोक का वर्णन है, और अंततः जो सूर्य मंडल है उसका विषय में जो शिशुमार चक्र इत्यादि चीजों का वर्णन हमको 2 अध्याय प्राप्त होता है, और आखिरी 1 अध्याय जो है उसके अंदर हमको प्राप्त होता है नरक का वर्णन। तो इस प्रकार नरक के वर्णन के साथ ये 5वां स्कंद का पूर्णाहुति होता है। अभी तुरंत छठा स्कंद कैसे प्रारंभ होता है, नरक का वर्णन सुनने के बाद ओ जो भी पाप करता है उनको नरक जाना पड़ता है, ये वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज पूछने लगे सुखदेव गोस्वामी से, अच्छा कोई पाप करता है तो नरक जाना नरक जाता है, तो नरक जाने से उनको पाप का क्षय हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति तो क्षय नहीं होता, फिर वापस पाप करेगा तो जीव का उद्धार कैसे होगा। तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के इस प्रश्न को जवाब देते हुए अजामिल का वृत्तांत सुनाते हैं। तो भक्ति का वर्णन, नाम का महिमा, भक्ति का वर्णन शुरू होता है। तो इस प्रकार आपको ये पांचवा स्कंद का और छठा स्कंद का लिंक बताया, और चौथा स्कंद का और पांच का स्कंद का लिंक ये है कि जैसे पिछले स्कंद के चौथे आखिरी अध्याय के आखिरी में उन्होंने पूछा था 27वां श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को, ने कहा कि ये या एष उत्तान पादो या एष उत्तान, उत्तान पाद जो मनु के पुत्र है, स्वयंभू मनु के पुत्र है, उनके विषय में मैंने वर्णन किया है। अभी वंशः प्रियव्रताप्य निबोध नृपसत्तमा, हे नृपसत्तमा ओ राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, आप सुनो सुनो निबोधा, सुनो क्या सुनो, वंशः प्रियव्रता स्यापि, प्रियव्रत के वंशों के बारे में उनके विषय में भी सुनो। तब उनके बारे में प्रियव्रत के बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यो नारदात आत्मविद्याम, नारद मुनि से आत्मविद्या को श्रवण करके अध्यगमः पुनर्महीम, तो वो वैराग्य ले लिए थे, लेने के बाद पुनर्महीम पुनर उनके राज्य में आए, भुक्त्वा विभाज्य पुत्रेभ्यः, तो उन्होंने क्या किया वो महीम यानी इस पृथ्वी को राज्य को भोगा, भोगने के बाद अंततः उनके पुत्रों को अपने राज्य विभाजन करते हुए पुत्रेभ्यः ऐश्वर्यम समगात पदम, तो भगवान के धाम को प्राप्त किए। एक ही श्लोक में वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने पिछले स्कंद में, क्या किया अभी प्रवृत्ति के बारे में सुनो, प्रियव्रत ने क्या किया, नारद मुनि से आत्मविद्या का श्रवण करते हुए उन्होंने वैराग्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं ब्रह्मा जी का आदेश था वो आगे आपको आएगा, तो वापस आए और उन्होंने क्या किया वंश को उन्होंने स्वीकार किया और राज्य को स्वीकार किया, पुत्रों की उत्पत्ति की, और अंततः क्या किया उन्होंने सब छोड़ के अपने वापस वैराग्य को स्वीकार कर लिए। तो कोई कह सकता है कि प्रेव्रत जो है हाँ निश्चित रूप में उनका फॉल डाउन हो गया ऐसा कोई कह सकता है, लेकिन ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भक्त होता है जिनका वर्णन प्रियव्रत का वर्णन इस श्लोक में कैसे हुआ देखिए, बड़ा सुंदर दो शब्दों से हुआ है, भागवतः, भागवतः का अर्थ क्या है महान भक्त है जिनको भागवत कहा जाता है, दूसरा शब्द क्या है आत्मारामः, वो साधारण भक्त नहीं थे वो आत्मारामः, तो आत्मारामः शब्द का अनेक अर्थ है, एक अर्थ यह है कि जो अपनी आत्मा में ही रमते हैं उसको आत्माराम कहा जाता है। ये मायावादी लोग भी कभी कभी, ब्रह्मवादी लोग भी आत्माराम हो सकते हैं, योगी लोग भी कभी आत्माराम हो सकते हैं, लेकिन इधर आत्मा का अवरेह करते हैं कि कृष्ण आततम इति आत्मा, जो हर जगह व्याप्त है उसको आत्मा कहा जाता है, आततम जो हर जगह व्याप्त है उसको आत्मा कहा गया है, वो कौन है कृष्ण, तो आत्मा का वास्तविक अर्थ है कृष्ण, भले ही कभी कभी हम लोग जीवात्मा को सूचित करते हैं लेकिन आत्मा का वास्तविक अर्थ है कृष्ण। तो आत्माराम का अर्थ क्या है, जो आत्मा में रमता है, जो कृष्ण में ही रमते हैं, कृष्ण कथा में जो हमेशा रमण करते हैं, ये प्रियव्रत उस प्रकार के भक्त थे, वो साधारण ब्रह्मवादी नहीं थे, उस प्रकार के भक्त थे जो कृष्ण कथा में भी उनका मन लगा हुआ है, कृष्ण के विषय में हमेशा श्रवण करते थे, उनको जड़ वस्तु क्या है भौतिक वस्तु क्या है कोई होश ही नहीं था। खास करके जिसका नारद मुनि के साथ संबंध हो गया हो, जिनका नारद मुनि से शिक्षा ग्रहण किया हो, जो हमारे निवृत्ति मार्ग के आचार्य है, तो वैसे व्यक्ति गृहस्थ जीवन को कैसे स्वीकार कर सकता है भला। जैसे गृहस्थ बनने के लिए गए थे दक्ष के पुत्र
10,000 पुत्र, नारद जी गए उनको क्या कर दिया, सबको सन्यासी बना दिया। वापस दक्ष ने कहा और 1,000 पुत्रों को उत्पन्न करूंगा, जाओ। पहले नारद मुनि को प्रवचन देना पड़ा, 10,000 पुत्रों को प्रवचन दे के उनको समझा बुझा के सन्यासी बना दिया, विरक्त बना दिया। वापस जो 1,000 पुत्र आए उनको ज्यादा प्रवचन नहीं दिया, देखो तुम्हारे जो बड़े भाई ना कितना आनंद में जी रहे, आप लोग भी ऐसे बन जाओ, खाली बस थोड़ा बहुत कह दिया तो वो भी। तो इतने पावरफुल प्रवचारक है नारद मुनि, वो एक होलसेल यूथ प्रीचिंग करते हो उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी प्रेवरत गृहस्थ कैसे बने, हो सकता है कि इनका फॉल डाउन हो गया। नहीं, अगर ऐसा कोई सोचता है वो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। मान लो कि अपराध के कारण भी किसी का पतन होता है, उसको ही पतन नहीं माना, नहीं मानना चाहिए। तो एक वैराग्य से युक्त व्यक्ति दो कारणों की वजह से वो पुनः ग्रस्त होना हो या राजा बनना हो होता है, दो कारणों की वजह से होता है। एक कारण है अपराध, दूसरा कारण है भगवान की इच्छा। तो अपराध के वजह से जो होता है, तो अपराध क्षय होने के लिए, जैसे गरुड़ जी के प्रति अपराध किया शबरी मुनि ने, तो उनको गृहस्थ बनना पड़ा। तो बाद में वापस क्या बन गए, अपराध को भोगने के बाद, उनकी सजा को भोगने के बाद वापस अपनी स्थिति में आ गए हैं। तो इसलिए अपराध का क्षय होना भी एक भक्ति है। भक्ति के द्वारा करते करते मान लो कोई अपराध हो गया, तो अपराध की वजह से कहीं वापस भौतिक स्तर में आना पड़ा, तो उसमें भी जो भक्त दुख या कष्टों को अनुभव करता है वो अन्य भौतिकवादियों के जैसा नहीं है। उसके अंदर जो उनका जो अपराध का कारण अहंकार है वो धुल जाता है। अब देखिए भागवत में इन लोगों का वर्णन है, जैसे कुछ महान ऋषियों ने शबरी मुनि का उदाहरण दिया, एक नहीं अनेकों अनेक उदाहरण है भागवत में जिसने अपराध के वजह से हुए। इसलिए नारद जी कहते हैं व्यासदेव को, व्यासदेव उपगोहनम पुनः निवृत्त तात्पर्यो, जो व्यक्ति किसी कारणवश अपक होने की वजह से, किसी अपराध की वजह से वो उनका भौतिक जगत में आना होता है, ग्रस्त बनना पड़ता है, फिर भी उनके प्रति अपराध मत करो क्योंकि वो वापस आएंगे, कुछ समय की बात है। और एक दूसरा कारण है भगवान का इच्छा से। भगवान की इच्छा से कोई व्यक्ति विरक्त होने पर भी, जैसे प्रियव्रत, वो क्या हुआ, वो वापस गृहस्थ बने और वापस उनको विरक्त हो गए। तो ये क्यों, भगवान की इच्छा से हुआ। खास करके प्रियव्रत जो है, ये जो लीला है वो भगवान की लीला समझना चाहिए। क्यों ऐसा भगवान करते ही क्यों है, कोई प्रश्न उठा सकता है। भगवान कृष्ण इसलिए करते हैं सारे जगत को शिक्षा देने के लिए, दो शिक्षा देने के लिए। एक शिक्षा ये देने के लिए, देखो गृहस्थ जीवन कैसे बिताना चाहिए देखो, दूसरा कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का महिमा देखो वो गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी और राजकार्य करने पर भी, जरा सा भी भौतिक प्रभाव उनके ऊपर नहीं है। भौतिक क्लेशों का या दुखों का, इच्छाओं का, काम क्रोध चीजों का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरों को उदाहरण देने के लिए कैसे गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए एक, दूसरा सारा जगत को भक्ति की महिमा को वर्णन करने के लिए। ये दो कारणों की वजह से भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त परम विरक्त होने पर भी उनकी योजना से गृहस्थ बनते, ये कैटेगरी में आते हैं प्रियव्रत। अपराध की वजह से शबरी मुनि के जैसा नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण की योजना से इस प्रकार हुए करके प्रियव्रत के विषय में समझना चाहिए। क्योंकि आगे आप बहुत सारे श्लोकों में प्रियव्रत की महिमा सुनोगे। वैसे पहले श्लोक में देखा जाए तो एक ऐसा लगता है कि प्रियव्रत को किया कहा जा रहा है, ग्रे अरमत, अरमत अरमत रमत मतलब रमण कर रहा है, ग्रह में रमण किया। जो ग्रह क्या है, गृहस्थ क्या है, यत मूलम, मूल है, किसका मूल है, कर्म बंधन का मूल है। दूसरा चीज किसका मूल है, पराभव का मूल है, कर्म बंधन का मूल है गृहस्थ आश्रम। इस प्रकार प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं पढ़ोगे, पाक खास करके भागवत के स्कंदों में, पांचवें स्कंद में भी आता है, the forest of enjoyment. ऐसे पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि अरे रे हम कहाँ फंस गए भाई. देखिए बहुत वो सुनते ऐसा लगता है कि ये सही बात है, इससे निकल जाना चाहिए. इट इज ट्रू. ये पराभव, ये खास करके कर्म बंधन की बात है. दूसरा क्या है? पराभव. पराभव का अर्थ क्या है? जीवन का उद्देश्य जो है उसको प्राप्त नहीं करना, उसको हार माना जाएगा. जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है. वो स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? उसको परीक्षा में पास होना है, उद्देश्य है. इतना स्कूल जाने पर भी अगर वो परीक्षा में पास ना हो तो उसको पराभव कहा गया है. तो मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाना, वो पराभव है. इसलिए गृहस्त जीवन जो है वो ये दो चीज का मूल है. एक कर्मबंधन का मूल है और पराभव का मूल है. अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे गृहस्थ बनना है, अपनी स्वइच्छा से बनता है, तो समझना चाहिए कि वो फंस गया, पराभव में फंस गया और कर्मबंधन में फंस गया. लेकिन प्रियव्रत जैसा अगर कोई है, प्रियव्रत के पच्चिन्नों में कोई चलता है, हमारे रिसेंट एक आचार्य हुए, इनका नाम है भक्ति नशील भक्ति ठाकुर, उनके पच्चिन्नों में चलने वाले जो गृहस्थ होते हैं वो महान है. क्यों महान है? भक्ति की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं. भगवत गीता में भगवान ने इस बात को कहा. क्या कहा? कि राग द्वेष मुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरान आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्रसादम अधिगच्छति. ये प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? प्राय हम सुनते हैं प्रसाद मतलब प्रसाद का टाइम हो गया, हाँ अभी चलो. लेकिन प्रसाद का अर्थ है इधर कृपा. लेकिन क्या है कृपा? भगवान कृपा कृपा है क्या? तो उधर हमारे आचार्य ने स्पष्ट रूप में कहा है, प्रसाद का अर्थ इधर ये है कि भौतिक जगत में रहने पर भी, गृहस्थ में रहने पर भी, विषयों के साथ संपर्क में रहने पर भी, विषय भोग करने पर भी, वो विषयों के द्वारा, भौतिक जगत के द्वारा, त्रितापों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये केवल और केवल भक्ति कृष्ण कृपा से होता है. हम देखते हैं बहुत सारे भक्त हैं, वो बहुत धनी हैं, उनके पास बहुत ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन भौतिक झंझटों के द्वारा वो प्रभावित नहीं है. इसलिए धन होना समस्या नहीं है. वो धन के वजह से ये सोचना कि मैं धनी हूं, ये समस्या है. परिवार में रहना समस्या नहीं है, ये सोचना है कि मेरा परिवार है, मेरे वजह से ये लोग जी रहे हैं, ये समस्या है. तो ये पराभव का कारण होता है, कर्मबंधन का कारण होता है. इसलिए भगवद गीता में खास करके तीसरे अध्याय में पांचवें अध्याय में भगवान ने सिखाया है, और भागवत में इन महान राजाओं के द्वारा ये सिखाया प्रियव्रत से हमको आश्रम गृहस्थ आश्रम में कैसे जीना चाहिए. उसको स्वीकार भी करना है तो क्यों स्वीकार करना चाहिए? स्वीकार इसलिए करना चाहिए छोड़ने के लिए. जैसे साबुन का उदाहरण मैंने पहले दिया है. क्या है वो साबुन का उदाहरण? आप स्नान करने जाओ, साबुन को स्वीकार करो. किसके लिए? अभी साबुन से साफ हो जाता है, साबुन से अच्छा लगाया, फिर साबुन लगा के बाहर निकला. नहीं, वो लगाओ इस किसके लिए? छोड़ने के लिए. पत्नी को स्वीकार करो, छोड़ने के लिए स्वीकार करो. कोई भी धन को स्वीकार करो, छोड़ने के लिए. घर को स्वीकार करो, छोड़ने के लिए. जिस स्वीकार करने के समय में ही याद रखना, मैं छोड़ने के लिए स्वीकार कर रहा हूं, तब इसके द्वारा प्रभावित नहीं होगे. ये एक्चुअली वैदिक सभ्यता है. आप गृहस्थ हैं, जो विवाह हुआ होगा, पता नहीं आपके जो विवाह किया, जो कराने वाले पंडित जी इस बात को सिखाए होंगे कि नहीं. आजकल तो एक औपचारिक तर्क में हो गया है. विवाह के समय संस्कार में एक विधि होता है. विवाह के पहले के दिन नांदी होता है, उसमें जो इसका विवाह होने वाला लड़का जो है, जिसको वर कहा गया है, वो हाथ में डंडा लेके घर से बाहर निकल जाता है, रोड पे चले जाता है. तब पुजारी कहता है मामा जी को, लड़के मामा जी को बोलता है, जाओ उनको बुला के लाओ. तो मामा जी जाते हैं बुला के. जा कहाँ जा रहे हो? जाओ वापस आओ. तो कहता नहीं नहीं मुझे जाना है, काशी जाना है. काशी जाके मुझे अभी अध्ययन करना है, ये सब झंझट में मुझे फंसना नहीं है. तो नहीं, आप तुम योग्य हो, विवाह करने के बड़े योग्य हो, आपको वंश चलाना है और संसार में बहुत सारे कर्तव्यों को अनुभव करना है, और ये सब अनुभव करके कर्तव्यों को निभाने के बाद वापस आप जाना. तब वो ब्रह्मचारी कहता है, यानी वर कहता है, अच्छा वैसा है क्या? ठीक है मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त पर? मैं क्या करूंगा, मेरे कर्तव्यों को निभाने के बाद मैं वापस जाऊंगा। तो मामा जी कहते हैं मैं आश्वासन देता हूं, ये आप सब लोगों ने किया है ये विवाह में एक संस्कार में एक विधि है। देखिए हमारे कल्चर में है ये सब चीजें। अगर कोई सच में समझे इस बात को तो गृहस्थ जीवन के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होगा। अगर नहीं समझ के सोचता है कि मेरा शादी है तो गया काम से, अगर कोई सोचता है कि मेरा मैरिज है तो डाइवोर्स होने वाला है। शादी है मतलब पूरा जीवन जो है आपके पत्नी आपके बच्चे आपको मजाक उड़ाएंगे, आपको मजाक बनाएंगे, मजा। विवाह शादी मतलब मजा, मैरिज मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट। जब तक हम रहेंगे साथ में तब तक आदान प्रदान, जब चाहे तब तोड़ देंगे, डाइवोर्स। लेकिन विवाह संस्कार है, ये संस्कार जैसे प्रियव्रत विषय में कहा गया है, इधर कहा गया कि जी कि प्रियव्रतो भागवता आत्मारामो कतम मुने, क्यों कतम क्यों, अगर विवाह करना है तो क्यों स्वीकार करने, किसके लिए? छोड़ने के लिए। वो विवाह संस्कार के अंतर्गत एक विधि है। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है तो वो कभी भी इस भौतिक चीज के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये वास्तविक कृष्ण की कृपा है, ये भगवद्गीता में भगवान ने इस बात को कहा। प्रसादम अधिगच्छति, दूसरे अध्याय का ये 64वां श्लोक में आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये प्रेमवृत्त विषय में थोड़ा बहुत जो भी परिचय हमने दिया, आगे भी उनके गुणगान। स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परम विरक्त, परीक्षित महाराज के इस प्रश्न को सुन के थोड़ा क्रोध भी आया सुखदेव गोस्वामी को, अपराध मत करो, कभी संशय मत करना प्रेमवृत्त के महत्ता के ऊपर। गृहस्थ बनने मात्र से उनकी जो महत्ता में कोई कमी नहीं है, मैं इसको कैसे है वो समझाता हूं करके परम विरक्त सुखदेव गोस्वामी जो है प्रियव्रत का गुणगान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।